गाथा, रूप वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं उषा राजे सक्सेना की लिखी कहानी वह कौन थी। स्ट्रेथम पार्क का वह हिस्सा जिसे रुकरी कहते हैं मुझे शुरू से बेहद पसंद था। रुकरी एक वक्त में किसी रोमांटिक अंग्रेज लॉर्ड ने अपनी प्रेयसी बीवी को तोहफे में दिया था, जो एक खूबसूरत बगीचा है जिसमें बहुत कलात्मक ढंग से हर मौसम में फर्क फर्क किस्म के फूल खिलाए जाते हैं। चारों तरफ हरियाली, खूबसूरत लॉन, ऊंचे ऊंचे दरख्त, बीच में लगे फव्वारे, जगह जगह कल कल करते बहते नाले, सर्प सी बल खाती घुमावदार पगडंडियाँ, कटावदार सीढ़ियाँ, लताओं और ध्रुमों से ढके आँख में चौली खेलते भूल भुलैया से अर्ध गोलाकार गलियारे, और रास्ते और उनके बीच लाल और गुलाबी फूलों से ढके आर्चेस, साथ में बेहद मनमोहक गोल आयताकार चौरस और त्रिकोण क्यारियों में कलात्मक ढंग से उगाए गए मनमोहक फूलों के गलीचे मन को ऐसा लुभाते हैं कि बस वहीं रम जाने को जी चाहता है। अब यह पब्लिक पार्क है, कोई भी वहां जाकर प्रकृति के साहचर्य में सारा दिन गुजार सकता है। मैं अक्सर रुकरी के उस बेंच पर बैठा करती हूँ जो अजेलिया और फोरसाइथिया की झाड़ियों के बीच बड़े ही कलात्मक ढंग से छुपाकर रखी गई है, जो मेरे जैसे ही एकांत प्रिय लोगों की सुविधा के लिए रखी गई होगी शायद। यूं यह जगह बेहद खामोश और महफूज है। काफी लोगों को तो पार्क के इस हिस्से के बारे में पता भी नहीं। बात यह थी कि इधर कुछ दिनों से मैं बेहद बेचैन थी, और इस बेचैनी का मतलब जाहिर था कि मेरे अंदर कुछ पक रहा है और कलम उसे कलम बंद करने के लिए बेजार थी। खैर, वहां बैठी मैं इस सोच में थी कि अपने ख्यालों का शायरी अंदाज दूं या कहानी का, कि एक अजब सी मगर बेहद लुभावनी खुशबू मेरे नथनों में समा गई और मैंने देखा एक खुशगवार औरत जिसके वजूद में कशिश थी हल्के कदमों से चलती हुई आकर मेरे सामने पड़े हुए कटे दरख्त के तने पर बैठ गई। मेरी नज़र उसकी नज़रों से टकराई, वो हौले से मुस्कुराई। मैं उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाने ही जा रही थी कि मेरी नज़र उसके रंगों के चुनाव और कपड़े पहनने के सलीके पर गई, जो कि बेहद दिलकश था। उसके बाल कटे हुए थे, उसकी नाजुक उंगलियों के नाखून रंगे हुए थे, जो उसके वजूद को और भी खुशगवार बना रहे थे। वह अपनी उंगलियों से खेल रही थी। अचानक उसकी उंगलियां आपस में उलझ गईं और वह मेरी तरह मुखातिब होकर मुस्कुराई, फिर बोली, आप अदीब हैं ना, अफसाने लिखती हैं और शायरी भी करती हैं। मुझे कुछ हैरत सी हुई, फिर मैंने सोचा शायद मेरे अफसाने और रिसाले पढ़े हों या मेरी तस्वीर किसी अखबार में देखी हो। फिर भी अपने हम शहर गोरों की तरह चेहरे पर एक अंग्रेजी मुस्कुराहट फैलाते हुए मैंने कहा, आपने कैसे पहचाना कि मैं अफसाना निगार हूँ? उसने ज़रा शोख अंदाज में कहा, वैसे ही जैसे आप अपने अफसानों के मौजू को कहीं भी पहचान लेती हैं, फिर उसको लफ्ज़ों का जामा पहनाकर दुनिया के सामने रख देती हैं। मुझे उसके बात करने का ढंग न सिर्फ अच्छा ही लगा बल्कि खासा दिलचस्प भी लगा। यूं मुझे अजनबी लोगों से बात करने में कम ही मज़ा आता है, और सच कहूँ तो कई बार मैं ये नए लोगों से मिलने से बहुत कतराती हूँ। जी चाहता है किसी कंदरा में चली जाऊँ। यही वजह थी कि मुझे पार्क का ये हिस्सा जो बेहद खामोश और सुनसान है बेहद अच्छा लगता है। एक बात और है, मुझे अकेले और अकेलेपन से कोई डर नहीं लगता। मेरे अफसानों के मौजू और शायरी के तस्वुर हमेशा अकेले में ही आते हैं, जो मेरी ज़िंदगी को खुशगवार और दिलचस्प बनाए रखते हैं। खैर, उसके बात करने का अंदाज मुझे इस कदर भाया कि मेरा दिल करने लगा कि वह बोलती जाए और मैं सुनती जाऊँ। शायद उसने मेरे ख्यालों को पढ़ लिया, और वह कुछ शायराना अंदाज में बोली, मैं अक्सर आपको यहाँ तन्हाई में बैठे देखती हूँ और आपके जहन में आते ख्यालों को पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मैं ज़रा हैरत में आ गई, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा था। फिर भी मैंने उसी के अंदाज में उसे छेड़ते हुए कहा, यह तो सरासर ज्यादती है। एक तो आप बिना इजाज़त मेरे बेहद अजीज़ और दिली ख्यालों को पढ़ने की कोशिश करती हैं और फिर मुझे अंदाज भी नहीं होने देती। उसकी खूबसूरत गर्दन ज़रा हिली, उसकी आंखें और होंठ ज़रा मुस्कुराए, फिर जैसे मुझे दावत सी दे रही हो बेहद दिलचस्प अंदाज में बोली, उसी का तो मुआवजा देने आई हूँ। आपको एक अजीबो गरीब मगर बेहद सच्ची कहानी सुनाती हूँ जो खुद मुझ पर गुजरी है। उसकी आवाज़ की कशिश ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया और मैंने दावत कबूल कर ली। वह इत्मीनान से पेड़ के तने पर बैठ गई और कहने लगी, एक 12 साला लड़की जिसकी आंखों में सपने भरे हैं और गंडी की बूटे वाली सफ़ेद फ्रॉक पहने अपनी बड़ी बहन के साथ किसी जलसे में सबसे आगे की कुर्सी पर बैठी है। मंच पर कई लोग बैठे हैं, उनमें बैठा एक शख्स जिसकी आंखें बेहद गहरी हैं, जिसने सफ़ेद लिबास पहन रखा है, उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वह एक गीत गाता है, आज नहीं प्रिय कल, कल कल लड़की को लगता है कि वह गीत शायर सिर्फ उसके लिए गा रहा है। वो विभोर हो उठती है, उसे शायर की आवाज़ बेहद दिलकश और वज़नदार लगती है। उसकी अदाएं उसके जहन में उतरती जाती हैं, उसे लगता है अचानक उसके अंदर एक नए कायनात का जन्म हुआ है। जलसा खत्म हो जाता है, वह अभी भी कुर्सी पर बैठी है। उसकी बहन उसे हाथ पकड़कर उठाती है, शायद जो ऊंचे कद का है उसकी बड़ी बहन से बातें करता है। अचानक उसने उसकी मौजूदगी का एहसास किया और उसके रुखसार को छूते हुए बोला, बड़ी प्यारी बच्ची है, और थोड़ा सा झुककर उसकी ओर मुखातिब होकर पूछता है, आपको हमारी गज़ल पसंद आई? उस 12 साला लड़की के अंदर कुछ होता है, उसका तन बदन झंझना उठता है। वह शर्माकर अपनी बहन के दुपट्टे को ज़ोर से खींचती है। एक खुशबू, अजब सी खुशबू उसके जहन को सराबोर कर उसमें समा जाती है। लड़की की सपनीली आंखें और सपनीली हो जाती हैं। शायर, शायरी, तसव्वुर, ख्याल, ख्वाब, उस लड़की की ज़िंदगी के तमाम पहलू बन जाते हैं। वक्त वक्त पर उसके जहन में ढेरों सवाल उठते हैं। ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार उन्हें हवा में उछाल देती है। उधर जल्द ही बड़ी बहन का ब्याह हो जाता है और वह अपने शौहर के साथ चली जाती है। फिर ये 12 साला लड़की अकेली रह जाती है। स्कूल, पढ़ाई, खेल कूद में ज़िंदगी भागती जाती है। उस दिन जब बड़ी आपा घर आई, बोली, अब्बू आपके ब्याह की बात कर रहे हैं, कोई है तो बता दीजिए। वह क्या बताए, उसे आज तक कोई पसंद ही नहीं आया। फिर उसने सोचा, कोई पसंद तो है, पर है कौन, कहाँ है, क्या नाम है उसका। वो खुशबू, वो छुअन, वो तन बदन में उठती झंझनाहट, नहीं नहीं उसे शादी नहीं करनी है, शायद एक दिन वह उसे मिल जाएगा, उसे इंतज़ार करना है, उस खुशबू का, उस छुअन का, उस झंझनाहट का, उस सपने का। और उसने बड़ी आपा से कहा कि उसे शादी नहीं करनी है, वो और पढ़ना चाहती है। अब्बू ने थोड़ी नाराज़गी के बाद उसकी बात मान ली और वह कॉलेज में दाखिल हो गई। और फिर वह उसे उन तमाम चेहरों में ढूंढती रही जो उसके आसपास थे। वह नहीं मिला, वो खुशबू नहीं मिली, वो गीत नहीं मिला। उन तमाम लोगों की कोशिशें बेकार हो गईं जो उसके आसपास थे। कोई उसे लुभा न सका या कोई उसे पसंद नहीं आया। एक दिन तंग आकर अब्बू ने उसका ब्याह अपनी पसंद के एक खूबसूरत और नेकदिल नौजवान से करा दिया। उसका विलायत में मकानों के खरीद फरोख्त का कारोबार था। उसके खाविंद ने उसे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया और उसकी नेक नियति, मासूमियत और पाकीज़गी पर फिदा हो गया। जल्द ही वह अपने खाविंद के साथ विलायत आ गई। नया मुल्क, नए तौर तरीके, बिल्कुल नई दुनिया। खुद को संभालने में उसे काफ़ी वक्त लगा, साथ ही उसे अपने तमाम फरायाज का इल्म भी था। एक दिन उसने एक खासे वक्त में अपने खाविंद से पूछा, क्या आप वही शख्स हैं जिसका मुझे इंतज़ार था? उसका खाविंद उसकी मासूमियत पर निसार होता हुआ बोला, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ख्वाब ख्वाब होते हैं और हकीकत हकीकत होती है। आप नाजुक ख्यालों की मलिका हैं, शायराना दिल रखती हैं और मैं उसकी कदर करता हूँ। उसने खुदा से दुआ की और अपने नेक और कद्रदान खाविंद के लिए यूँ ज़िंदगी चलती रही। दिन और साल निकलते रहे। इसी बीच उसके दो खूबसूरत बच्चे हुए। वह बच्चों की परवरिश में मसरूफ हो गई, पर उसके ख्वाब, उसके तसव्वुर उसकी आंखों में जवां रहे। वह खुशबू, वो आवाज़ उसके जहन में जब तब बांसुरी बजाती रही। उसका इंतज़ार कभी ना ख़त्म हुआ। इसी तरह एक लंबा अरसा गुजर गया। उसके बच्चों की शादियां हो गईं और वो अपने जोड़ों के साथ अपने अपने घोंसलों में रहने चले गए। उसके बालों में कहीं कहीं चांदी के रेशे भी झिलमिलाने लगे थे अब। फिर एक दिन वह अपने शौहर के साथ जलसे में गई। वह सबसे आगे कुर्सी पर अपने खाविंद के साथ सफ़ेद बूटे वाली साड़ी पहने बैठी है। मंच पर बहुत से शायर बैठे हैं। वह गज़ल सुन रही है, गीत सुन रही है। फिर वह जिसने सफ़ेद लिबास पहन रखा है, जिसके सर पर ढेरों चील से सफ़ेद बाल हैं, जिसकी आँखें बेहद गहरी हैं, जिसकी आवाज़ बेहद दिलकश और वज़नदार है, वह कोई गीत गाता है। वो अंदाज़, वो अदा उसके जहन में उतरती है और वह ख्यालों में खो जाती है। मुशायरा ख़त्म हो जाता है। उसका खाविंद उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है, चलिए आपका तारुफ आज के शान महफिल से कराते हैं। वह बादलों पर चलती हुई वहाँ तक पहुँचती है। शायर के बदन से एक खुशबू सी उठती है जो उसकी सांसों में समा जाती है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। कभी उसे लगता है उसका कुछ खो गया है, कभी उसे लगता है कि उसे कुछ मिल गया है। अजीब कश्मकश है। उसे कुछ बेचैनी सी होने लगती है। वह कुछ पकड़ना चाहती है मगर पकड़ नहीं पा रही है। वो शायर को आदाब करती है। शायर उसे कबूल करता है और कहता है, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी नज़्म पसंद आई होगी। फिर वह कंधे थपथपा देता है। वो छूना उसके अंदर कहीं गहरे छू जाता है। उसका तन बदन झंझना उठता है। अचानक उसके अंदर एक 12 साला लड़की अर्गंडी की फूलों वाली झालरदार फ्रॉक पहने नज़र झुकाए खड़ी हो जाती है। वह अपने खाविंद के कोट का कोना पकड़कर खींचती है। उसका शौहर उसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर तसल्ली देता है। वह बादलों पर सवार घर पहुंचती है और अपने शौहर से लिपट जाती है। उसका शौहर उसके प्यार में डूब जाता है। औरत को लगता है कि उसके जिस्म के अंदर कहीं गहरे में कोई मरसिया गाता रहा है और आज वह फूट फूट कर बह निकलेगा। वह खुद को बटा बटा महसूस करती है, मगर उसे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि शौहर इस दुनिया का खुदा होता है और वह अपने शौहर की छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपना जिस्म और जान लगा देती है। इधर उसे अपने जज्बातों पर कोई काबू नहीं रहता और वह एक खत शायर के नाम हवाई डाक से भेज देती है, जिसके जवाब का इंतज़ार उसे हर रोज़ रहता है। उसकी ज़हनी हालत दिन पे दिन नाजुक होती चली जाती है और वह दिन रात तस्बीह के दानों में उसका नाम फेरती है। उसकी ज़िंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं जाता जिसमें उसका तसव्वुर ना होता हो। वह खुदा से दुआ करती है, अल्लाह उसे सब्र दे, उसे राह दिखाए। कुछ ही दिनों बाद मुल्क से उसकी आपा का खत आता है कि उसके बेटे की शादी तय हो गई है। शादी में उसका शिरकत करना बेहद ज़रूरी है। उसका खाविंद उसे मुल्क ले जाता है। शादी की गहमा गहमी ख़त्म होने के बाद वह अपने तमाम अजीज़ रिश्तेदारों से मिलती है। फिर महज اتفاقاً ایک دن وہ اپنے آپ کو اس قدیمی شاعر کے روبرو کھڑا پاتی ہے۔ وہ اس کا استقبال کرتا ہے، اس کے سارے بدن میں بجلی سی مچل جاتی ہے، اس کا خود پر سے اختیار ختم سا ہونے لگتا ہے، مگر وہ خود کو سنبھالتی ہوئی دھیمے سر میں کہتی ہے، اللہ، میں نے زندگی بھر آپ کا انتظار کیا، آپ کے خط کا مجھے ہر روز انتظار رہتا ہے، آپ سے فقط ایک گزارش ہے، خدا کے لیے آخری سفر پر مجھے آواز دیجیے گا۔ شاعر جو خاموش کھڑا تھا اس کی انگلیوں کا بوسہ لیتے ہوئے بولا کہ آگے سے وہ اس کے خط کا جواب دے گا۔ اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ پچھلے دنوں اس کی ملاقات اس قدیمی شاعر سے ہوئی تھی۔ اس کے شوہر نے کہا، آپ کو ان کا شاگرد بن ان سے اپنی نظموں کی اصلاح کرانی چاہیے، وہ ایک نفیس انسان اور اعلیٰ درجے کے شاعر ہیں۔ اس نے کہا، اللہ، میں نے کوشش تو کری تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک بوند آنسو چھلک پڑتا ہے۔ اس کے خاوند نے پیار سے کہا، ہمت مردہ، مدد خدا، اور کندھے پیار سے تھپ تھپا دیے۔ چھٹیاں منا کر کچھ ہی دنوں بعد دونوں واپس اپنے گھر لوٹ آتے ہیں۔ کہتے کہتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جلدی سے کہا، اللہ، دیر ہو گئی، مجھے چلنا چاہیے، میرا انتظار ہو رہا ہے۔ ابھی میں کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ میں اسے روکتی، وہ چھوٹے مگر تیز قدم رکھتی ہوئی درخت کی اور بڑھ گئی، جس کے نیچے اونچے قد کا چیل سے سفید بالوں والا ایک خوشگوار شخص کھڑا تھا۔ جلدی ہی اس شخص نے اپنے کندھوں کو اپنے داہنے ہاتھ کے گھیروں میں لے لیا، اور پل بھر میں دونوں میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ کافی دیر وہاں میں بیٹھی اس ادبھت جوڑے کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس ساری رات میں سو نہیں پائی۔ رات بھر اس دلکش عورت، اس اونچے قد والے خوشگوار شخص، جس کے بال چیل کی طرح سفید تھے، میرے سپنوں میں آتے رہے۔ وہ ادھوری کہانی مجھے بے چین کرتی رہی۔ صبح اٹھتے ہی میرا ارادہ پارک میں ڈیرا ڈالنے کا تھا، اس امید میں کہ شاید وہ آ ہی جائے، اور کہانی پوری ہونے کے ساتھ ساتھ میں اس کی دلچسپ شخصیت کا لطف اٹھاؤں۔ ابھی میں نے چائے بنائی ہی تھی اور پہلی چسکی پینے کے لیے پیالہ اٹھایا ہی تھا کہ باہر دروازے کی گھنٹی بجی۔ تمام ضروری اور غیر ضروری کھاتوں کے ساتھ ایک موٹا سا رجسٹرڈ لفافہ بھی تھا۔ کوتوہل وش سب سے پہلے میں نے اس موٹے لفافے کو ہی کھولا۔ کھولتے ہی ایک خط میری چائے کی پیالی میں گرتے گرتے بچا۔ خط کسی اجنبی کی بے حد نپی تلی لکھاوٹ میں تھا۔ اس نے میری تصویر ایک آرٹیکل کے ساتھ اخبار میں دیکھی تھی، جس سے اسے جانکاری ملی کہ میں نے لندن میں ایشین ویمن رائٹرز کلب کی استھاپنا کی ہے، اور میں ان تمام ایشیائی عورتوں کو کلب میں آنے کی دعوت دیتی ہوں جنہیں ساہتیہ میں رچی ہے، تاکہ ہم عورتیں آپس میں ملیں اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کو جان پہچان کر اپنے لیے ساہتیک ماحول پیدا کر سکیں۔ آگے اس نے لکھا تھا، کچھ دنوں پہلے اس کی بیوی، جو بے حد نیک اور پاک خیالات کی تھی، ایک حادثے میں موت کی گرفت میں آج جنت نشیں ہو گئی ہے۔ وہ اس خط کے ساتھ اپنی بیوی کی نظموں کا مسودہ اور فوٹو بھیج رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ گزارش کرتا ہے کہ میں کسی پرکاشک سے مل کر ان نظموں کو ایک خوبصورت کتاب کی شکل دے دوں، وہ میرا شکر گزار ہوگا۔ اس کی خود کی صحت ٹھیک نہیں، ورنہ یہ تکلیف وہ مجھے نہیں دیتا۔ میں بے حد عجیب محسوس کر رہی تھی۔ جلدی سے مسودہ کھولا، اور جو میری نظر فوٹو پر پڑی جو مسودے کے ساتھ رکھی تھی، میں سکتے میں آ گئی۔ میرا سر چکرا گیا اور مجھے چکر سا آنے لگا۔ یہ فوٹو تو اس دلکش عورت کی ہے جو مجھے کل پارک میں اپنی ادھوری کہانی سنا گئی تھی، اور جس کے لیے میں رات بھر بے چین رہی۔ اور وہ اونچے قد کا چیل سے سفید بالوں والا شخص جو اس کا انتظار درختوں کے نیچے کر رہا تھا، وہ کون تھا؟ ابھی آپ نے سنی اوشا راجے سکسینہ کی لکھی کہانی وہ کون تھی۔ گاتھا میں اس کو آپ کے لیے پرستت کیا تھا پوجا شریواستو نے۔